दूसरा इतिहास अध्याय 18 पद 1। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के साथ समधियाना किया। उत्तरी राज्य का राजा अहाब सबसे दुष्ट राजाओं में से एक था। क्यों मुझे नहीं मालूम, परंतु वो अहाब से मिलने समरिया को गया। जब वो उससे मिला, अहाब ने कहा, देखो मैं आरामियों के विरुद्ध युद्ध करने रामोत गिलाद को जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यहोशापात ने कहा, क्यों नहीं, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों देश पर राजा हैं, इसलिए निश्चय ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अतः वे दोनों आरामियों के विरुद्ध रामोत गिलाद को गए। यहोशापात ने जाने से पहले पूछा, क्या यहां कोई परमेश्वर का नबी है जो परमेश्वर की इच्छा हमें बताए? उसने करीब 400 नबियों को बुलाया और उन्होंने कहा, जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, अपने शत्रुओं पर विजय पाकर तुम समृद्ध हो जाओ। अब यहोशापात ने पूछा, क्या यहां और कोई नबी नहीं है? यहां 400 नबियों ने एक मत होकर कहा था, परंतु यहोशापात को कुछ व्यंग जैसे लगा। उसने कहा, एक है जिसका नाम मिकाया है, जो यिल्मा का पुत्र है, परंतु वो ऐसा मनुष्य है जिसने कभी मेरे लिए भली बात नहीं कही है। मैं उसे बुलाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो मेरे लिए बुरी खबर रखता है। उसने कहा, ऐसा मत कहो, शायद वो ही ठीक हो, उसको भीतर बुलाओ और देखो उसके पास कहने को क्या है। इसलिए उसने अपने सेवक को भेजकर मिकाया को बुलाया और उससे कहा, तुम राजा को सदा बुरी खबर देने के लिए ख्याति प्राप्त हो, इसलिए भली बात कहना, उसको खराब खबर ना देना। इसलिए राजा ने जब मिकाया अंदर आया, उससे कहा, क्या मैं आरामियों के विरुद्ध गिलाद के रामोत को जाऊं? और वृद्ध मिकाया ने कहा, हां जाओ, अपने शत्रुओं को पराजित करो और समृद्ध हो जाओ, निश्चय आगे बढ़ो। राजा ने कहा, कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि प्रभु के नाम से मुझसे झूठ मत बोलना? तब नबी ने राजा से कहा, ठीक है, यदि तू सत्य जानना चाहता है तो मैं तुझे बताता हूं। मैंने एक दर्शन देखा है कि इसराइल के लोग भिकर गए हैं और वे बिना चरवाहे के भेड़ों के समान हो गए हैं। उसने ये घोषणा की कि राजा युद्ध में पराजित होगा। राजा ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं बताया था कि ये मनुष्य मेरे प्रति कभी भली बात नहीं कहता? नबी ने आगे कहा, अध्याय 18 पद 18, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दहने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। नबी ने कैसा भव्य दर्शन देखा, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्ग की सारी सेना उसके दहने बाएं खड़ी है। अध्याय 18 पद 19 से लेकर 22 तक। तब यहोवा ने पूछा, इसराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा पैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। सिद्ध किया नबियों में से एक जो वहां था, जिसने लोहे के सिंह बनाए और चारों ओर दौड़ता हुआ कहता था, इस तरह तुम आराम के राजा को दौड़ाओगे। उसने मिकाया के गाल पर थप्पड़ मार के पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? अध्याय 18 पद 24। उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इसलिए इसराइल के राजा ने उसे कैद में रखने की आज्ञा दी जब तक कि सब शांत न हो जाए। उसने कहा, यदि तू शांति पाए तो मैं झूठा नबी हूंगा। अब देखना यह है कि परमेश्वर ने ये परिस्थितियां कैसे उत्पन्न की। परमेश्वर ने क्यों एक झूठ बोलने वाली आत्मा को 400 नबियों में प्रवेश करने दिया कि वे राजा को गिलाद के रामोत में युद्ध में भेजे? मैं इसमें अधिक लिप्त होना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर ने हर चीज अपने उद्देश्य के लिए बनाई है और शैतान भी परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। परमेश्वर ने शैतान के कार्यों को सीमित किया है। वो वही कर सकता है जिसको करने की छूट परमेश्वर उसे देता है। शैतान ने अपनी सीमा और पाबंदी के लिए आयुब के विषय में परमेश्वर से शिकायत की थी। परमेश्वर शैतान को अपने उद्देश्य के लिए अनुमति देता है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता दी, चुनाव करने की शक्ति दी। ये आवश्यक था कि मनुष्य के चुनाव करने के लिए कुछ चीजें हों। यदि चुनाव करने के लिए कुछ न हो तो चुनने का क्या अर्थ रह जाएगा? परमेश्वर ने मुझे चुनाव करने की क्षमता दी है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो स्वयं निर्णय ले सके, जो चुनाव कर सके। यदि संसार में सभी भली वस्तुएं हों तो चुनाव करने के लिए क्या रह जाएगा कि वो चुनाव करे? आज भी परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने की योग्यता दी है। उसने शैतान को विद्रोह करने की आज्ञा दी कि वो विकल्प लाए, ताकि परमेश्वर जाने कि मनुष्य वास्तव में उससे प्रेम करता है और हृदय से उसकी सेवा करता है या नहीं। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के प्रेम और संगति को ढूंढता है, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को विद्रोह करने की छूट दी। परमेश्वर ने आदन की वाटिका में एक पेड़ लगाया और शैतान को छूट दी कि वो पेड़ से अनुचित लाभ उठाए, कि मनुष्य को अपना चुनाव करने का मौका मिले, ताकि परमेश्वर को मनुष्य के सच्चे प्रेम का पूरा भाग मिले। परमेश्वर ने आज आपको भी चुनाव की क्षमता दी है। परमेश्वर का प्रेम, सेवा और श्रद्धा दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके पास अपना चुनाव है। यदि आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और परमेश्वर जानता है कि ऐसा आपने चुना है और आपके हृदय में ऐसा करने की इच्छा से आपने चुनाव किया है। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं ऐसा कहने के लिए मजबूर नहीं हूं। मैं यदि चुनाव करूं तो उससे बैर भी रख सकता हूं। मैं उससे विद्रोह का चुनाव भी कर सकता हूं। मैं पूरी तरह विद्रोह करके शारीरिक जीवन जीने का चुनाव भी कर सकता हूं। सद्गुण से मैंने प्रभु से प्रेम करना, उसकी सेवा करना और उसको समर्पित रहना चुना है। वो जानता है कि ये वास्तविक प्रेम है, वास्तविक समर्पण है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है। इस प्रकार वो उस गर्म जोशी की संगति को पाता है जो वो मनुष्य से चाहता है। यहां परमेश्वर एक झूठी आत्मा को छूट देता है कि नबियों में बैठ कर झूठ बुलवाए, ताकि वो अपने उद्देश्य के अनुसार इस राजा को रामात गिलाद तक ले जाए। आप कहेंगे, क्या परमेश्वर कुछ और तरीका प्रयोग नहीं कर सकता था? निश्चय ही वो कर सकता था, परंतु उसने चुना और उसके पास चुनाव की क्षमता और शक्ति है। और मैं बहस नहीं कर सकता कि उसने ये चुनाव क्यों किया। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना। मैं प्रसन्न हूं कि उसने मुझे चुना। मैं विवाद नहीं करता। मैंने ये नियम अपनाया है कि मैं परमेश्वर से विवाद न करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मुझसे अधिक बुद्धिमान है। इसलिए मैं सिर्फ कहता हूं, यदि तूने यही चुना है तो तू जानता है कि उत्तम क्या है। आहाब आराम के राजा बेन-हदद के विरुद्ध गया। बेन-हदद ने अपने सेनापति से कहा था कि हमें एक मनुष्य आहाब चाहिए, इसलिए उसे पकड़ने में लगे रहना, मुझे बाकी सेना की परवाह नहीं है। यदि राजा हाथ आया तो वे भी आ जाएंगे। इधर आहाब और यहोशापात जब युद्ध में जा रहे थे, आहाब ने कहा, देख मैं चलाकी से काम लेना चाहता हूं, मैं अपने सिपाही की वेशभूषा धारण करूंगा, यहां तुम मेरे कपड़े पहनकर मेरा रथ ले चलो, मैं दूसरे रथ में रहूंगा, मैं यहीं पर युद्ध करना चाहता हूं। इसलिए यहोशापात ने आहाब के कपड़े पहनकर रथ संभाल लिया। उधर आराम का सेनापति आहाब के रथ को ढूंढ रहा था, अतः आहाब के रथ को पाकर उसे घेर लिया। वे घोड़े पर चढ़कर चिल्लाता हुआ भागने और बचने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वे सभी उस पर ध्यान लगाए थे। जब उन्होंने देखा कि वो आहाब नहीं है, उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। एक सैनिक ने बहुत से लोगों में से पीछे रहकर एक तीर छोड़ा। ये अनोना ही था कि वो किसी को निशाना नहीं लगा रहा था, पर शत्रुओं की ओर यूं ही चला रहा था, और परमेश्वर के द्वारा तीर राजा आहाब को छेद कर निकल गया। वो युद्ध में सांझ तक खड़ा रहा, परंतु दिन के अंत में आहाब मर गया। यूं परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ और यहोशापात यरूशलेम को लौट आया।